हरे कृष्णा, आप सबका नंदगांव में स्वागत है। हम श्री नंदगांव में बैठे हैं, ये नंद भवन है और शिवजी महाराज यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत बनकर बैठे हैं और उनके शीर्ष पर नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, सखा, गाय सब लीला करते हैं और यहाँ से सीधे बरसाने का भी दर्शन होता है। अब तो थोड़ा धुंध है और एक जगह है वहाँ पर मंदिर के पीछे सिंहासन, सिंह पौरी कहते हैं, उसमें से राधा रानी खड़े रहकर यहाँ कृष्ण भगवान को इशारे करती है। नंदगांव के चारों ओर बहुत पवित्र स्थान है। नंद पर्वत पर यहाँ पर नरसिंह वर्मा वराह का मंदिर है जिसकी नंद बाबा पूजा करते थे। नीचे नंद बैठक है, फिर पीछे मोती कुंड है और जो मैंने आपको बताया था शायद किसी कुछ लोगों ने बताया है, टेर कदम स्थान है जहाँ पर शाम के समय जब गायें लौट के आती हैं तो कृष्ण भगवान उस कदम के पेड़ पर चढ़ते हैं और बंसुरी बजाकर सब गायों को बुलाते हैं। हर एक गाय को अपना अपना नाम उस बंसी के धुन में सुनाई पड़ता है। बहुत सुंदर लीला है वहाँ पर। और वहीं पर रूप गोस्वामी महाराज ने भजन किया था और जो अपने अनमोल ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, सुंदर सुंदर स्तववली, अपने पद्य संग्रह, ये सब कुछ रूप गोस्वामी ने वहाँ पर भजन करते हुए लिखा है। जब राधा गोविंद देव मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय वो मंदिर निर्माण के समय पे अपना भजन स्थली छोड़कर फिर नंदगांव में आए थे और उसी जगह पर एक दिन रूप गोस्वामी जी बैठे थे। उस दिन सनातन गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई का जन्मदिवस था, तो उनको लगा कि अपने बड़े भाई के लिए बहुत अच्छा उत्सव होना चाहिए और उनके उत्सव के लिए जन्म के बड़ी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर उनको देने चाहिए। इतने में एक सुंदर कन्या वहाँ पर आती है और अपने टोकरी में चावल, बहुत सुंदर दूध और मीठा सब लेके आती है, मेवे। और फिर रूप गोस्वामी जी खीर बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। उस समय सनातन गोस्वामी वहाँ पधारते हैं और सनातन गोस्वामी जी जब खीर को पाते हैं तो उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है, रोमांच होते हैं, उनकी आँखों से अश्रु आते हैं। उन्हें कहाँ से आपको ये सामग्री प्राप्त हुई? उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर कन्या आई छोटी सी, मुझे देखे गई है। तो वो कहते हैं कि वो राधा रानी स्वयं थी जो आपको चावल और दूध देखे गई है। उन्होंने कहा आपने राधा रानी से सेवा लिया है? वो कहते राधा रानी ने आपके आनंद के लिए यहाँ पर ला के दिया है। शुद्ध भक्ति की सेवा करने के लिए हमेशा भगवान तरसते रहते हैं और भगवान की सेवा करने के लिए शुद्ध भक्त हमेशा तरसते रहते हैं। दिव्य प्रतिस्पर्धा है। तो वो स्थान साथ में है जहाँ पर टेर कदम है, उसके आगे आशेश्वर महादेव हैं, आशेश्वर वन में। वहाँ पर भगवान के जन्म होने के पश्चात कैलाश से शिव जी आए थे बाल रूप का दर्शन करने के लिए, क्योंकि गौलोक धाम में भगवान के बाल रूप के दर्शन नहीं है। यहीं पर वो जन्म लेते हैं और लीला करते हैं, बालक की रेंगते हैं, तोतले बोल बोलते हैं, खेल खेलते हैं, चिना चपटी चोरी करते हैं। तो शिवजी बाबा आते हैं और नंद रानी उनको मना कर देती है दर्शन करने के लिए, इस भय से कि कोई कंस का आदमी आया हो ऋषि बन के, मुनि बन के। बहुत गिड़गिड़ाते हैं, कहते मोती ले लो, धन दौलत ले लो, लेकिन दर्शन नहीं होगा। फिर शिवजी जाते हैं यहाँ पर आशेश्वर वन में, वहाँ बैठ कर बहुत रोते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत भगवान को पुकारते हैं। तो फिर भगवान रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो फिर यशोदा मैया उनको बहुत प्रयास करती हैं शांत करने का। फिर सखिया कहती हैं, पूर्णमासी जी कहती हैं कि आप उस बाबा को बुलाइए, शायद उसकी कृपा से ये रोना बंद कर दें। फिर सखियों को भेजते हैं, शिव जी को बुलाते हैं और फिर लाला के दर्शन कराते हैं और फिर भगवान रोना बंद कर देते हैं। तो शिव जी से बहुत हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे भगवान के सेवा में हमको संयम नहीं खोना है। आशा ऐसी एक शक्ति है कि आशा के आधार पर ही उन्होंने भगवान के ध्यान को अपनी ओर खींचा, इसलिए उनका नाम आशेश्वर भगवान, शिवजी भगवान। फिर यहाँ पर उद्धव क्यारी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कुसुम सरोवर पे, जब उद्धव जी यहाँ पर आए थे तो गोपियाँ उनको एकांत में ले गई अपने दिल की बात उनको बताने के लिए। तो वहाँ पर उनको आसन पर बिठा के सब गोपियों ने अपने हृदय की बात उनको बताई है। बहुत लंबा प्रसंग है, नंदगांव में यहाँ पर 8-8 दिन लीला चलती है, तो बहुत उत्कट जगह है वहाँ पर। जब उन्होंने देखा कि इतना उत्कट प्रेम यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ से सब कांटे बोए यहाँ पर, ताकि कोई जो अयोग्य व्यक्ति है वहाँ पर नहीं पहुँचे। फिर मोती कुंड है, यहाँ पर ठाकुर जी ने मोती की खेती की है। पावन सरोवर है, बहुत सुंदर पावन सरोवर। में कथा ऐसी है कि अक्षय तृतीया के दिन नंद बाबा जो है वो प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे स्नान करने को निकलने का प्रयास करते हैं। मैया जो है मटरी बना रही थी उस समय, तो कन्हैया जी आके पूछते हैं, कह रहे मटरी क्यों बन रही है आज सूखा प्रसाद? बोले सफ़र में जो है वो सूखा प्रसाद होना चाहिए, इसलिए। कौन सफ़र में जा रहा है? बोले बाबा सब लोगों को लेके प्रयागराज जा रहे हैं त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए। तो उनको अच्छा लगता नहीं है, है ना, हमेशा उनको ब्रज के बाहर जाने की बात जो है वो अच्छी लगती थी। तो दूसरे दिन जाने का प्लान था, अक्षय तृतीया बहुत पवित्र दिन है। तो अक्षय तृतीया के दिन वो जो दूसरे दिन बाबा को कहते हैं कि अब आज मत जाइए आप, कल जाइए, कल बहुत पवित्र दिन है। तो एक दिन से पोस्टपोन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लीला रचानी है ना यहाँ पर। तो अगले दिन जब नंद बाबा उठकर अपने सरोवर में स्नान करने जाते हैं, तो भोर के समय पे उनको एक बड़ा लंबा चौड़ा आभूषणों से घिरा हुआ मुकुट पहना हुआ भव्य दिव्य ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, राजा ऐसे कोई महाराज हो गई, जिनका दर्शन कभी उन्होंने पहले नहीं किया था नंदगांव में। और वो महाराजा धीराज जो है वो उन्हीं के कुंड में स्नान कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक है, सब स्नान करते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद जो वो कर रहा है वो बहुत अजीब है। तो स्नान करके फिर जो किनारे में रेत है, जो रज है, उसमें लोटपोट हो रहा है, वो फिर स्नान कर रहा है, फिर स्नान करके फिर आ रहा है, फिर लोटपोट हो रहा है, फिर स्नान कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप स्नान कर रहे हैं फिर लोट धुल में जा रहे हैं, क्या बात है, आपका परिचय क्या है? नंद बाबा बताते हैं महाराज जी कि मैं स्वयं प्रयागराज हूँ, साल भर दुनिया भर के लोग आके मुझमें स्नान करते हैं, और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन मैं यहाँ पर आकर अपने आप को शुद्ध कर लेता हूँ। तो कुछ देर बाद वो सामने किनारे में देखते हैं बहुत सारी सुंदर देवी समान युवतियाँ अलंकार से आभूषित, सब लोग वही कर रहे हैं, नदी में स्नान, कुंड में स्नान कर रहे हैं, किनारे के रज में लोटपोट हो रहे हैं, फिर स्नान कर रहे हैं, फिर लोटपोट हो रहे हैं, फिर वो किनारे में जाते हैं, देवियों आप कौन हो? तो कोई कहती है मैं गंगा हूँ, तो कहते हैं मैं जमुना हूँ, तो कहते हैं मैं सरस्वती हूँ, नंद कावेरी हूँ, गोदावरी हूँ। सब लोग स्नान कर रहे हैं, बोले क्यों? बस दुनिया भर के लोग आके हम भी स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, तो साल में एक दिन हम लोग यहाँ पर आके स्नान करते हैं, अपने आप को पुनित कर लेते हैं। नंद बाबा क्या करते हैं फिर? प्रयागराज जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तो प्रयागराज आके स्वयं हमारे कुंड में स्नान कर रहा था, हमें जरूरत क्या है प्रयागराज जाने की? इस तरह से सारी नदियाँ, सारी तीर्थ जो है वो उधर पावन सरोवर, उसका नाम पावन सरोवर पड़ा उसकी, वहाँ पर सब आश्रय लिए हुए हैं नंदगांव में, क्योंकि यहाँ का अलौकिक आनंद जो है विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ पर स्वयं, जैसे पुजारी जी ने बताया, ब्रह्मांड जिनके गोद में खेलते हैं वो स्वयं यशोदा मैया की गोद में यहाँ पर खेलते हैं। हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करता हूँ, मैं नंद बाबा महाराज की पूजा करता हूँ, क्योंकि साक्षात परब्रह्म जो नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक जो है वो इनके आनंद के लिए इनके आंगन में बालक बन के डोल रहा है, इसलिए मैं नंद महाराज को पूजता हूँ, क्योंकि वो वंदनीय है, पूजनीय है, इनके आनंद के लिए ठाकुर जी बालक बन के कौ लोग धाम छोड़ के माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वैकुंठ छोड़ के वो लोग धाम छोड़ के वो यहाँ के गोपियों का छाछ और माखन खाने के लिए बालक बन के घर जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा करते हैं, याचना करते हैं उनकी कृपा की, उनके प्रेम को चखने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस तरह से नंदगांव जो है बड़ा आनंद का धाम है, यहाँ पर सखा लोग रहते हैं भगवान के, नंद बाबा के दो बड़े भाई, दो छोटे भाई, उनके दो दो पुत्र हैं जो भगवान के अष्ट सखा हैं, यहाँ पर गाय चराते हैं, भगवान को रिझाते हैं, गीत गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लीला यहाँ पर है। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप सब लोग नंदगांव में आए हैं, कृष्ण भगवान को बलराम जी को आप प्रणाम कीजिए, और यहाँ जैसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर बलराम जी भी सामने रंग के हैं और कृष्ण भी सामने रंग के हैं। हाँ, दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि दोनों भैया बांसुरी लेकर वन में जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं, और बलराम जी भी सांवले रंग के हैं, इसका कारण यह है कि वो भगवान का रक्षा करने के लिए उनके जैसे रंग धारण कर लेते हैं, क्योंकि तो कंस जो आएगा तो फिर उसको रक्षा करने के लिए, क्योंकि बलराम जी जो है वो वात्सल्य भाव में भी है, सखा भी है भगवान के, वात्सल्य भाव में बड़े भाई है कि रक्षा भी करते हैं। माता उनको कहती है कि देखो जब जाओगे गौचारण करने के लिए तो नदी के पास कहीं यहाँ वहाँ संकट होगा तो छोटे भैया की रक्षा करना। और फिर मैया उनको श्रृंगार भी जैसा करती हैं ताकि भाई भाई में झगड़ा ना हो, एक ही बांसुरी टाइप की बांसुरी, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही मुकुट, वैसे सब कुछ धारण कराती है। और तीसरा कारण यह है कि बलराम जी ब्रज में आप कहीं भी जाएंगे तो बलराम जी का दर्शन जो है सामने रंग का ही है, क्योंकि यहाँ पर वो पूर्णतः कृष्णमय हैं, कृष्ण भावना, कृष्ण भाव, कृष्ण भगवान के प्रेम में इतने रत हैं कि जब हम किसके बारे में सोचते हैं उससे जैसा ही बन जाते हैं, तो वैसे ही सामला रंग धारण करते हैं। ये सब प्रेम की लीला है, सब यहाँ प्रेम का भाव है। और माता के बाजू में कृष्ण भगवान है, यहाँ पर भी जब भोग लगता है तो दो थाली लगाते हैं ना, तो ठाकुर जी अपनी थाली में से खाते हैं, मैया की थाली में भी खाते हैं, वात्सल्य प्रेम है ना यहाँ। तो बाबा के बाजू में बलराम जी, हाँ मैया के पास जाके सोते हैं गोद में, इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर भाव है, प्रेम है। थोड़ा सा तिनका भी हमको मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। आप सब लोगों को हम प्रार्थना करते हैं, नंद बाबा से आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान की सेवा करने की शक्ति भी आपको दें। यहाँ पर हमारे परम मित्र गोस्वामी भी रहते हैं, उन्होंने हमको कहा था कि यहाँ पर जो भी सेवा करने का जो भी भाव पैदा होता है वो नंद बाबा यशोदा मैया की कृपा से होता है। विश्वभर में जो भी रसोई बनती है भगवान के लिए वो यशोदा माता के नेतृत्व में बनती है। यशोदा माता जी और राधा रानी ये रसोई की सबसे सब वर्ल्ड में इंचार्ज हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ठाकुर जी के लिए भोग बनता है। हमारे रसोई में भी हमको यही भाव होना चाहिए कि यशोदा रानी का किचन है, वो जब उसकी सहायता के रूप में, असिस्टेंट के रूप में हमारी औरतें घर में भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन तो कोई उनके हाथ का ही खाते हैं। वैसे द्वारका में कहते हैं वो प्राणियों को अपने कि वो हमेशा ब्रिज की याद करते हैं, तो प्राणियाँ कहती है कि अरे हमारे सेवा में कुछ त्रुटि है क्या, हम लोग इतना प्रेम से बनाते हैं, कुछ अगर त्रुटि हो तो बताइए। 56 भोग बनाती हैं, हवा करती हैं उनको, रुक्मिणी जी, सत्य मामा जी भोजन कराते समय अलग अलग, फिर भी वो बीच में ही मैया की याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका 56 भोग बहुत अच्छा है, कोई उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कर्रा सा भोजन मैया चबा के निकाल के मेरे मुँह में डालती थी उसका स्वाद कुछ और ही था, उसकी इससे मैं तुलना नहीं कर सकता। आपका भाव अपनी जगह है, मैया का प्रेम तो मैया का प्रेम है। जैसे द्वारका में जाके भी नंद बाबा, ग्वाल बाल और मैया सबकी याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं, क्योंकि ब्रज जैसा प्रेम उनको कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ सब कुछ छोड़कर आते हैं वो, यहाँ पर अपना भगवान की स्थिति जो है, भगवान का जो पोजिशन है उसको भी छोड़ देते हैं, छोटा सा बालक बन के, हाँ जो परावलंबी मतलब पराधीन जैसा दिखते हैं वो, अपनी मैया को बादल में आवाज़ होती है तो गोद में जाते भाग के। नंद बाबा कहते हैं कोई भगवान है, कोई देवता है, आप लोग उसको देवता बोलते हैं, लीला करते हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन देखो जब बादल गरजते हैं तो डर के मारे मैया के गोद में भागते हैं। और किसी के घर में जाके चोरी करते हैं, माखन चोरा नहीं तो फिर वो लघुशंका कर देते हैं, किसी के बालक के कान में पानी डाल लेते हैं। इस तरह से वो ऐश्वर्य भाव को यहाँ प्रवेश करने देते नहीं हैं। वो अगर सोचता भी है कि अरे ये तो ठाकुर जी हैं तो तुरंत वो ऐसी लीला करते हैं सब भूल जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड लीला किया था उन्होंने, माँ मुख खोला था और मैया को मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, तो मैया एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना करने, ये तो ठाकुर जी हैं, भगवान है, मैंने कितना इनको डांटा है, डंडा दिखाया है, क्या बुरा भला कहा है, कभी कुछ कहा है, अरे मैं तो कितना अपराध कर बैठी। तो तुरंत श्लोक बोलने लगी, प्रार्थना करने लगी हाथ जोड़ के, तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, तुरंत मुँह बंद कर लिया और हंस पड़े एकदम बहुत बढ़िया से, सब मैया भूल गई क्या देखा मुँह में, तुरंत गोद में लेते अरे मेरा बालक। ठाकुर जी को पसंद नहीं कोई ऐश्वर्य भाव, कोई यहाँ पर दंडवत करे उनको कोई, वो सब ग्वाल बालों के झूठन खाते हैं, ग्वाल बालों के कंधे पर चढ़ते हैं, उनको डांटते हैं, उनको कुश्ती में हरा देते हैं, हाँ ऐसा भाव जो है उसको अनुभव करने के लिए वो आते हैं,
गाली देते हैं,
हाँ गाली देते हैं उनको। अब जब माता बुलाती है भोजन को, आ जाओ जल्दी बाबा वेट कर रहे हैं आपके लिए, कैसे रास्ते में घूम रहे हो, चलो भाजो बाबा आ रहे हैं भोजन के लिए, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तब जो निकलते हैं वहाँ से तो सब सखा कहते हैं देखो अभी तुम खार रहे हो हमारे खेल में, इसलिए आए मौके पे जा रहे हो मान मैया का बहाना बना के। तो फिर दोबारा लौटते हैं,
फिर खेलने लगते हैं, फिर मैया डोर से डांटती हैं, देखो हम आ जाएगा, हाउ बुला हुआ जाएंगे, तुरंत भागने लगते हैं, देखो तुम फिर हार रहे हो फिर भाग रहे हो, कल तुम्हें खेलने नहीं लेंगे हम, एल्कोल आयन मौके में भाग रहे हो। तो उनको बालकों का खेल इतना प्रिय है कि वो इतने मग्न हो जाते हैं, सबको छोड़ने को तैयार है उसकी। इस तरह से उनके सखा है वो, जो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, इंद्र भगवान प्रार्थना करते हैं, तो उनको बहुत बोर हो जाता है, कह रहे बड़े देवता लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा समय बिगाड़ रहे हैं, तो मैं सखाओं के साथ खेलने के लिए आया हूँ, वो ऐश्वर्य की प्रार्थना कर रहे हैं सब, तो उनको उसमें ज़्यादा रुचि नहीं है, वो तो अपना उनका काम करवाते हैं अपना सब ब्रह्मांडों का, लेकिन अपना जो निजी आनंद जो है वो यहाँ पर आके लेते हैं। इसलिए बड़े पावन भूमि है, यहाँ पर बड़े संतों ने भजन किया है, सनातन जी गोस्वामी यहाँ पर पावन सरोवर में बैठ के भजन करते हैं, हमारे अभी अभी 100 साल पहले अखिलेंद्र कृष्णदास बाबा जी महाराज ने पावन सरोवर में भजन किया है, बहुत संतों ने भजन किया है, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है, हाँ संत लोग कहाँ भजन करते, जहाँ भगवान लीला करते हैं वहाँ का रस आस्वादन करने के लिए, प्रेम का अनुभव करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, याचना करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए संत लोग यहाँ पर बैठते हैं और भजन करते हैं, और सब लोग ने यहाँ पर आके प्रेम का दान मांगा है, हमको भी भगवान से प्रेम का दान मांगना चाहिए। हमारी तो योग्यता तो कोई है नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लिख के बोल लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ठाकुर जी हम पर कृपा करें, उनकी निजी सेवा उनके सेवक सेवकों के माध्यम से हमको दे दें, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। यहाँ के क्या हम तुलना कर सकते हैं, नंदगांव की बरसाने की जो भाव और प्रेम है, उनको हम केवल भिक्षा मांग सकते हैं, इसलिए हम लोग सेवा करने बरसाने आते हैं, वृद्धवासियों का ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए थोड़ी बहुत भक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए, नंद बाबा से यशोदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की जो इतनी बढ़िया सेवा करते हैं, हाँ विश्व में कोई नहीं कर सकता है, वो सब यहाँ पर बड़े प्रेम से होता है, ठाकुर जी के लिए कुछ कमी नहीं है अपने वैकुंठ में, सब ऐश्वर्य है उनके पास, लक्ष्मियाँ खड़ी हैं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ खड़ी हैं उनके पास सेवा करने के लिए ऐश्वर्यों के साथ, लेकिन वो आनंद छोड़ कर वो यहाँ का जूठा दधी और माखन खाने के लिए आते हैं, गोपियों का और गाल बाल का प्रेम लेने, डांट खाने, गाली खाने, उनके जूठन खाने के लिए आते हैं, हाँ मधुमंगल का गुलचा मार के मुंह से लस्सी पीते हैं जूठा, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य के दरे ये भी कैसा भोग है ऐसा भी भोग होता है, ठाकुर जी ऐसा भोग खुद लगा लेते हैं अपने आप ही बिना तुलसी का ले लेते हैं, प्रेम का भोग है वो। इसलिए हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम यहाँ पर तो किंकर भी नहीं बन सकते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, इनको हम अपनी शरण में ले लीजिए, थोड़ा बहुत प्रेम हमें भी प्राप्त हो जाए, तो हमारा भी बद्ध जीवन से मुक्त हो जाए हम, और ठाकुर जी की चिरंतन सेवा में लग जाए। जय जय श्री राधे श्याम श्री कृष्ण बलराम की जय हो।
बता दिया वो, और एक कथा होगी,
चलो दोबारा बता देते, कोई बात नहीं, गोसाई बोल रहे हैं। ये प्रसंग जो है वो गोपाष्टमी का प्रसंग है, जिसमें ठाकुर जी को 5 साल होने के पश्चात बड़ी गाय का भार संभाल लेते हैं, तब तक वो वत्सपाल है, तब तक वो बछड़ों को चलाते हैं, और बछड़ों को पालने का कैसा है कि नंदगांव के ऊपर आके मैया देखेंगे तो दिखाई होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, उतने दूर जाएंगे, आगे दूर नहीं जाएंगे, उनकी नज़र में, नज़र के रेंज में होना चाहिए, अब यहाँ पर आके देखेंगे कहाँ गौचारण कर रहे हैं, वत्सचारण कर रहे हैं, दिखना चाहिए कि यहाँ पर हैं, खदीर बन है ऐसे पास पास में। लेकिन उस दिन 5 साल होते हैं, तो बड़ी गाय सौंपने का प्लानिंग करते हैं, उसी दिन शाम को सब सखा उनको चढ़ाते हैं, अरे तुम तो अभी बालक हो, बाबा को तुम पर विश्वास नहीं है, तो तुमको छोटी छोटी गाय देते हैं, देखो तुम तो कुछ योग्य है ही नहीं, वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बाबा के पास आपके लिए, ठाकुर जी वो तो बहुत उसमें दुखी हो जाते हैं, अरे हकीकत है देखो बड़ी गाय तो खुद चराते हैं, छोटी गाय मुझे देते हैं, बहुत दुखी हो गए। उस दिन आते हैं सब लोग, हमेशा गीत गाते आते हैं, गीत गाते हुए घर आते हैं गौरज मुहूर्त पर शाम को, इस दिन अकेले आके तुरंत बिस्तर में मुंह डाल के सो जाते हैं, कुछ नहीं ना शयन होता है उनका, गीत गाते कुछ नहीं होता है, माखन नहीं खाते, मिश्री नहीं खाते, स्नान नहीं करते, सीधे सो जाते हैं। और उसी दिन जब यहाँ पर बच्चे चढ़ा रहे हैं उनको बालक सब, उसी दिन घर में मैया बात कर रही है, अरे अपना बालक तो बड़ा हो गया है, अभी अभी हमको उनको बड़े गाय का भाव देना चाहिए। तो सब लोग तय करते हैं कि अभी कल से 9 लाख गाय जो है हमारे साथ नहीं, कन्हैया और बलराम के साथ चलेंगे। तो उस दिन उनका तय है, लेकिन उसको पता नहीं, नाराज बस हो गए, सुबह उठते हैं 9 लाख गाय रेडी हैं, वो भी उत्सुक है बहुत कि कन्हैया जी के साथ जाने मिलेगा, सब लाइन से खड़े होते हैं, अलग अलग झुंड हैं उनके, सब खड़े हो जाते हैं, सब ग्वाल बाल सज धज के आते हैं, और ये भी अभी तक बिस्तर में सोए हुए हैं, मैया गीत गा रही है उठाने के, नहीं उठ रहे हैं, यहाँ मुँह कर रहे हैं, उधर मुँह कर रहे हैं, मतलब सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं। तो उसके कान में आके मैया बोलती है, आज से आपको बड़ी भाइयों को चराने को ले जाना है। और झट से उठ जाते हैं, एकदम तुरंत तैयार हो जाते हैं, थटाथट आ जाते हैं सज धज के, एकदम तुरंत भोग लेके मक्खन मुसरी का। फिर मैया कहती है कि ये लो, ये दो छतरी आपके लिए, दो भाइयों के लिए, और दो जोड़ी जूता, क्योंकि आप भी दूर जाएंगे, आप है ना दूर जाएंगे, और कंकड़ होंगे, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाओगे, क्योंकि बड़ी गाय तो दूर दूर जाती है चरने के लिए, बालक तो यहाँ घूमते हैं बछड़ा। तो कहते हैं कि अगर हमारी गायों को जूता नहीं मिलेगा तो हम जूता नहीं पहनेंगे, अगर हमारी गाय को छतरी नहीं होगी तो हम भी छतरी धारण नहीं करेंगे। बोले इतनी 36 लाख जूता, मतलब कितना जोड़ी हो गया, इतना जूता हमारे पास नहीं है, फिर छतरी भी नहीं है, दो है, दो जोड़ी जूता है, बस ले लो और जाओ। तो लेकिन हम नहीं पहनेंगे उसको, हम भी नंगे पैर जाएंगे। जब ये सुन रहे गाय सब सुन रहे कथा क्या हो रही है, तो समझते कि ये अभी नहीं पहनने वाले हैं, नंगे पैर जाने वाले हैं, तो कंकड़ लगेंगे, कांटे लगेंगे, पत्थर लगेगा, क्या क्या होगा, कष्ट होगा, उनके कोमल कमल जैसे चरण कमलों में कष्ट होगा। तो चारों दिशा में जाती है गाय सब, और कूट कूट के सब पत्थर कंकड़ जो एकदम मुलायम मक्खन जैसे बना देते हैं, तो कहीं भी जाने का प्लान हो जाए तो भी वो कहीं भी सब जगह मुलायम बना देते हैं। और सब गाय भी सोचते हैं कि हम उसको सींचेंगे अपने दूध से, बहुत मुलायम मक्खन जैसा बनाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर चरण गिरेंगे, चरण का चिन्ह होगा, सब प्लान कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग जब चरण चिन्ह बनेंगे इनके, कहीं भी उसको मतलब मिटाएंगे नहीं, उसको संभाल के चलेंगे दोनों भाइयों के चरण कमल को। कितनी लाख गाय है, कितनी लाख ग्वाल बाल है, हमको समझ में अभी तक आता नहीं है कैसे बचा सकते हो। तो सबसे आगे कृष्ण बलराम चलते हैं, उनके चरण से सबसे आगे, पीछे इतना झुंड चल रहा है, कैसे बचाते होंगे, लेकिन फिर बचाते हैं। सब रज में उनके चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, ये रज ऐसा है कि सुनहरा रंग का प्रकाश है उसके चरण कमलों के आसपास, सब चिन्ह है उसके अंदर, वेदी है उसमें, चक्र है, अंकुश है, मत्स्य है, हाँ पताका है, अलग अलग पाँव में दोनों भाइयों के, अलग अलग पैरों में, और यही वृंदावन के धाम का अलंकार है, और यही रज का महत्व है, क्योंकि यहाँ पर रज भगवान ने चप्पल पहना नहीं है, इनके जूते नंगे पैर का संस्पर्श यहाँ पर रत में हुआ है, और वो उस रज को स्वयं भी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसको खाया है ब्रह्मांड घाट में, हाँ बहुत बड़ी लीला है वो। भैया जी आके शिकायत करते हैं माँ से कि आज लाला ने माटी खाई है, तो कहते नहीं नहीं आज वो खेल खेल में हार गए थे ना बड़े भैया, इसलिए वो नाराज होकर आप मेरा कंप्लेंट कर रहे हैं, मैंने माटी वाटी नहीं खाया, बहुत बहस होती है। फिर भैया कहते चलो अभी क्यों झगड़ा करना है, विवाद करना है, आप मुंह खोल के दिखा दो, फिर वो दिखा देते हैं, तो ब्रह्मांड दर्शन होता है। कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी भी यहाँ पर रज खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके प्रियतम सखा जो हैं, प्रियतम सखियाँ जो हैं, वो भी नंगे पैर चलती हैं, राधा रानी भी चलती हैं, उनके चरणों की रज है वो, तो स्वयं भी उसको पान करते हैं। तो यहाँ की रज जो है बहुत देवताओं को प्राप्त नहीं होती है, सारे ब्रह्मांडों का वैकुंठों का धन भी लेकर आएंगे तो यहाँ की रज का कण नहीं खरीद सकते हैं, जिसमें हम एकदम मुक्त डोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के रज का जो आनंद है, यहाँ की जैसी जो कृपा है, वो कहीं भी किसी भी धाम में नहीं मिलेगा, सब धाम का उगम यहाँ पर है। हाँ, और यहाँ पर खास करके बोलते हैं कि यहाँ पर कोई साधु भजन कर पाता है तो वो बहुत भान साधु है, क्योंकि यहाँ के ग्वाल बाल जो हैं वो सब पतंग करते हैं उनको, फिर भी वो टिक पाता है अगर भजन में तो सही साधु है, यहाँ के ग्वाल बालों के पाठशाला में अगर वो पास हो जाता है तो वो बढ़िया साधु है ऐसे मुझे बताते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ का नटखट भाव है, हाँ यहाँ पर सब खेल खेल में सखा भाव में रहते हैं सब लोग। बोलो कृष्ण बलराम की, यशोदा मैया की, नंदलाला की। अभी मैं हमारे परम प्रिय महाप्रभु जी को विनती करूंगा कि कुछ कंक्लूडिंग मैसेज आपको दे दें। महाप्रभु जी की।